ये आकाशवाणी है। अब आप कनक लता से समाचार सुनिए। उत्तर प्रदेश में गोंडा रेल दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन के 21 डिब्बे कल दोपहर पटरी से उतर गए थे, जिससे 30 लोग घायल हो गए थे। लखनऊ गुवाहाटी रेलमार्ग को चालू करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस बीच इस मार्ग से गुजरने वाली ट्रेनों को दूसरे मार्गों से भेजा जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से नीट यूजी 2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम कल दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। न्यायालय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर किए बिना शहर और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। गहन पूछताछ के बाद 2023 बैच की एमबीबीएस की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उसका मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले की मूल निवासी सुरभि कुमारी ने कथित तौर पर पेपर लीक मामले के दोषियों के लिए नीट परीक्षा के पेपर हल किए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी के एक मुख्य सहयोगी लखबीर सिंह संधु उर्फ लांडा को एक प्रमुख आतंकी नेटवर्क को घातक हथियारों की आपूर्ति करने से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने कल मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के निवासी बलजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया। एजेंसी के अनुसार बलजीत सिंह पंजाब में लांडा के एजेंटों को हथियारों का मुख्य आपूर्तिकर्ता माना जाता है। एजेंसी की जांच में पता चला है कि बलजीत सिंह ने खालिस्तानी आतंकवादी सतनाम सिंह सत्ता को भी हथियारों की आपूर्ति की थी। एनआईए ने कहा है कि लांडा और सत्ता देश में विदेशी जमीन से आतंक को बढ़ावा देने में संलिप्त हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की शुरुआत अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ हुई है। बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार कृषि क्षेत्र में सुधार और गांवों में खर्च बढ़ने से मांग की स्थिति बेहतर हुई है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ा है और ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो रहा है। सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। लोकसभा सचिवालय द्वारा कल शाम जारी संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची प्रकाशित की गई है। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 23 जुलाई को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 500 बिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है। इसमें तैयार माल से 350 बिलियन डॉलर जबकि घटकों के विनिर्माण से 150 बिलियन डॉलर प्राप्त करना शामिल है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कल नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी का सशक्तिकरण रिपोर्ट जारी किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण फास्टैग नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों से दोगुना टोल वसूल करेगा। प्राधिकरण ने कहा है कि जानबूझकर विंडस्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है, जिससे अन्य लोगों को असुविधा होती है। प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी शुल्क संग्रह एजेंसियों को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर ऐसे वाहनों से दोगुना शुल्क वसूल करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर उर्सुला वॉन डेर लेन को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे वैश्विक कल्याण के लिए रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने के प्रति मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया सरकार की खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति के दूसरे चरण का आज नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। इस पहल का उद्देश्य एक ही मंच पर जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करना है। कीर्ति का पहला चरण इस वर्ष 12 मार्च को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।